अक्सर जब किसी नई शुरुआत या पूरी तरह से एक रीसेट की बात होती है ना, तो दिमाग में एक बिल्कुल साफ स्लेट की तस्वीर उभर कर आती है।
बिल्कुल, एक ऐसी स्लेट जिस पर कुछ भी पुराना ना लिखा हो।
हाँ, ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे किसी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को पूरी तरह से फॉर्मेट कर दिया गया हो। ये सोचना बहुत ही सुखद लगता है कि पुरानी सारी गलतियां, सारा करप्ट डेटा अब मिट चुका है
और अब जो नई शुरुआत होगी वो एकदम परफेक्ट होगी, है ना?
एकदम सही। इंसान हमेशा से ही इस क्लीन स्लेट की उम्मीद करता है, लेकिन जब हम मानव इतिहास और विशेष रूप से आज के हमारे स्रोत की गहराई में उतरते हैं, तो अचानक से ये साफ तस्वीर बहुत धुंधली हो जाती है।
हाँ, चीजें वैसी साफ नहीं रहती जैसी वो बाहर से दिखती हैं।
बिल्कुल, और आज के इस गहन अध्ययन में हम बिल्कुल यही समझने की कोशिश करने वाले हैं। आज की ये चर्चा उत्पत्ति यानी जेनेसिस की किताब के अध्याय 6 से लेकर अध्याय 9 तक के शोध और नोट्स पर आधारित है।
विषय है नूह और जल प्रलय का दूसरा भाग, मतलब पानी उतरने के बाद की जो नई दुनिया थी उसके बारे में।
ठीक है, तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। यह चर्चा सिर्फ एक बड़ी नाव, कुछ जानवरों और बाढ़ के पानी के सूखने के बारे में नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये इस बारे में है कि जब पूरी मानवता को ग्लोबल स्तर पर रीसेट किया गया तो उसके बाद असल में हुआ क्या।
हाँ, और इस अध्ययन में हम आसमान में दिखने वाले सतरंगी धनुष के असली और बेहद चौंकाने वाले अर्थ को समझेंगे। इसके साथ ही मौत की सजा के पहले नियम के पीछे का तर्क जानेंगे और एक ऐसे पारिवारिक विवाद की तह तक जाएंगे जिसने आने वाले कई राष्ट्रों का भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया।
और सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे हजारों साल पुरानी ये कहानियां आज के मानव स्वभाव की बहुत सटीक तस्वीर पेश करती हैं।
सच कहूं तो इस शोध की सबसे बड़ी खूबी यही है, ये केवल घटनाओं की एक सूची नहीं थमाता कि पहले ये हुआ फिर वो हुआ।
सही कहा, बल्कि ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो हुआ वो क्यों हुआ, मानव स्वभाव की कौन सी गहरी परतें इन घटनाओं के पीछे काम कर रही थीं।
तो चलिए सीधे उस पल में चलते हैं। पानी उतर चुका है, धरती फिर से सूखी है, नूह अपने परिवार के साथ जहाज से बाहर कदम रखते हैं। ये एक बिल्कुल नई दुनिया है, एक नया सवेरा। हमारे स्रोत बताते हैं कि नूह बाहर आते ही सबसे पहला काम ये करते हैं कि वे एक वेदी बनाते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये एक बहुत ही मार्मिक दृश्य है।
और इसके जवाब में ईश्वर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियम और वादे तय करते हैं जो इस नई दुनिया का आधार बनने वाले हैं।
बिल्कुल,
यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ईश्वर एक बहुत ही स्पष्ट और बिना शर्त वादा करते हैं। वे कहते हैं कि भविष्य में कभी भी दुनिया को पानी से नष्ट नहीं किया जाएगा।
अच्छा, और इसके साथ ही मौसम के एक चक्र भी स्थापित किया जाता है ना?
हाँ बिल्कुल, जैसे सर्दी और गर्मी, बुआई और कटाई। अब प्रकृति पहले से कहीं ज्यादा अनुमानित या कहें तो स्टेबल होगी। लेकिन इस वादे के पीछे का जो असली कारण है वो बहुत ही गहरा और थोड़ा हैरान करने वाला है।
हैरान करने वाला कैसे? मतलब ईश्वर ने वादा किया तो ये तो अच्छी बात है ना?
बात तो अच्छी है, लेकिन ईश्वर ये वादा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इंसान अब सुधर गया है, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंसान नहीं सुधरा है।
ओहो,
हाँ। इस शोध में महान विचारक जॉन कैल्विन का एक बहुत ही सटीक विचार साझा किया गया है। उन्होंने कहा था कि अगर ईश्वर ये वादा न करते तो हर दिन एक जल प्रलय लानी पड़ती।
हर दिन एक जल प्रलय, ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है।
बिल्कुल, ईश्वर स्वीकार करते हैं कि बचपन से ही इंसान का मन बुराई की ओर झुका होता है। बाढ़ ने दुनिया की सतह को तो धो दिया था, लेकिन इंसान की फितरत को नहीं।
इसका मतलब है कि जड़ की समस्या अभी भी वहीं की वहीं थी, इंसान का दिल नहीं बदला था।
एकदम सही। फिर भी इस सच्चाई को जानने के बावजूद ईश्वर आदम और हवा को दिए गए पुराने आशीर्वाद को नूह के लिए दोहराते हैं। वे कहते हैं, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ।
ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि ईश्वर की कृपा इंसान की बुराई से कहीं ज्यादा बड़ी है।
बिल्कुल,
ये एक दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ इंसान की बुराई का कड़वा सच है और दूसरी तरफ वही पुराना आशीर्वाद, लेकिन इस नई दुनिया में पुरानी व्यवस्था तो नहीं चल सकती थी।
हाँ, इसलिए कुछ नए नियम भी आते हैं, खासकर आहार यानी इंसान की डाइट को लेकर।
स्रोत बताता है कि अब जानवरों के मन में इंसानों का डर होगा और पहली बार इंसानों को मांस खाने की स्पष्ट अनुमति मिलती है।
लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ी है।
हाँ, जीवन का खून नहीं खाना है।
सही कहा, और इसके पीछे के तंत्र को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई स्वास्थ्य संबंधी नियम या खाने का कोई नया तरीका इजाद करने के लिए नहीं था। खून को जीवन का प्रतीक माना गया है।
अच्छा,
ये नियम इंसान को उसकी सीमा याद दिलाने के लिए था। जीवन और मृत्यु तय करने का अंतिम अधिकार सिर्फ रचयिता का है। इंसान जानवरों का उपयोग तो कर सकता है, लेकिन उसे इस बात का सम्मान करना होगा कि जीवन का असली स्रोत कौन है।
तो होम्स, परहेज करना असल में जीवन की पवित्रता का सम्मान करना था।
बिल्कुल,
और मुझे लगता है इसी जीवन के सम्मान से जुड़ा हुआ है मौत की सजा यानी कैपिटल पनिशमेंट का पहला नियम, जो इस हिस्से में सामने आता है।
हाँ।
हत्या के खिलाफ एक सख्त नियम बनता है कि जो कोई इंसान का खून बहाएगा उसका खून भी इंसान द्वारा ही बहाया जाएगा।
सही कहा आपने, और ये नियम इसलिए बहुत खास है क्योंकि ये किसी की जाति, वर्ग या सामाजिक हैसियत पर आधारित नहीं है।
अच्छा, मतलब प्राचीन दुनिया की तरह नहीं?
हाँ, प्राचीन दुनिया में अक्सर राजाओं या अमीरों की जान की कीमत ज्यादा होती थी और दासों की कम। लेकिन यहाँ आधार शुद्ध रूप से ये है कि हर इंसान ईश्वर के स्वरूप में बना है। इसलिए किसी भी इंसान की हत्या करना सीधे तौर पर ईश्वर के स्वरूप पर हमला करना है।
लेकिन जरा रुकिए, मुझे यहाँ एक बात खटक रही है।
क्या?
अगर इंसान का स्वभाव अभी भी बुराई की तरफ झुका हुआ है, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा, तो क्या इंसान को जानवरों को खाने की छूट देना और कैपिटल पनिशमेंट का नियम बनाना, मतलब इंसान के हाथ में ही किसी दूसरे इंसान की जान लेने का अधिकार देना, क्या ये खतरनाक इंसानों के हाथ में और ज्यादा ताकत देने जैसा नहीं है? ये तो आग बुझाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल करने जैसा लग रहा है।
ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और सतह से देखने पर ऐसा ही लगता है, लेकिन स्रोत का विश्लेषण ये स्पष्ट करता है कि इसे ताकत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
अच्छा,
जरा याद कीजिए जल प्रलय से पहले की दुनिया कैसी थी। अध्याय 6 बताता है कि वो भयंकर और बेलगाम हिंसा से भरी हुई थी। ये नया नियम उसी तरह की अराजक हिंसा को रोकने के लिए एक सख्त सामाजिक सुरक्षा तंत्र है।
ओ, मतलब एक बचाव का तरीका।
हाँ, ये प्रतिशोध नहीं है बल्कि न्याय का एक सिस्टम है। ईश्वर मानव समाज को खुद को सुरक्षित रखने का एक अधिकार सौंप रहे हैं ताकि दुनिया फिर से उसी पुरानी अराजकता में न डूब जाए।
समझ गए, तो ये एक तरह का नियंत्रण है, एक बाउंड्री लाइन है ताकि समाज काम कर सके।
बिल्कुल,
और इसी शांति और नियंत्रण के वादे का सबसे बड़ा प्रतीक आसमान में दिखाई देता है, इंद्रधनुष। लेकिन इस शोध ने रेनबो को जिस तरह से समझाया है उसने मेरे सोचने का नजरिया ही बदल दिया।
हाँ, ये सब बहुत ही दिलचस्प है।
हम बचपन से इंद्रधनुष को एक बहुत ही सुंदर 7 रंगों वाले प्राकृतिक चाप के रूप में देखते आए हैं जो बारिश के बाद आसमान में बनता है, लेकिन मूल भाषा और प्राचीन संदर्भ में ये एक धनुष है, यानी तीर कमान वाला युद्ध का हथियार।
बिल्कुल, प्राचीन संदर्भों में इसे एक दिव्य योद्धा के हथियार के रूप में देखा जाता था। उस समय की संस्कृतियों में ये आम मान्यता थी कि देवता बादलों में बिजली और तूफान के धनुष से लड़ते हैं।
अरे वाह,
ईश्वर ने जल प्रलय के जरिए दुनिया की बुराई और हिंसा के खिलाफ एक तरह का युद्ध किया था और अब वो अपना हथियार आसमान के बादलों में टांग रहे हैं।
ये अद्भुत है, ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई महान जनरल एक भयंकर युद्ध जीतने के बाद अपनी तलवार या अपना धनुष अपने घर की दीवार पर टांग दे और घोषणा कर दे कि अब हमेशा के लिए शांति है।
एकदम सही तुलना है।
वो हथियार अब हमले के लिए तना हुआ नहीं है बल्कि विश्राम की अवस्था में है।
हाँ, और अगर ध्यान से देखें तो आसमान में जो धनुष बनता है उसका रुख धरती की तरफ नहीं बल्कि ऊपर आसमान की तरफ होता है।
सही बात है।
ये स्पष्ट करता है कि ईश्वर का रुख अब मानवता के प्रति शांतिपूर्ण है। यह हर आने वाली पीढ़ी के लिए एक शाश्वत वादा है कि अब आसमान से विनाश की बारिश नहीं होगी।
तो हमारे पास शांति का वादा है, मौसम का चक्र है, न्याय का एक नया तंत्र है और आसमान में शांति का प्रतीक एक धनुष है। सब कुछ सेट है।
ऐसा लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा।
हाँ, नूह को इस नई दुनिया का नया आदम माना जा रहा है। वे भी पहले आदम की तरह जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, एक किसान हैं।
लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हम पाते हैं कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। आदम और हवा की तरह नूह भी एक बहुत ही विडम्बनापूर्ण स्थिति में फंसते हैं।
हाँ, आदम और हवा ईदन के बगीचे में एक पेड़ के कारण गिरे थे और नूह अपने ही लगाए हुए दाख की बारी यानी अंगूर के बगीचे के फल के कारण गिरते हैं।
बिल्कुल,
कहानी बताती है कि नूह शराब पीकर इतने नशे में आ जाते हैं कि वे अपने ही टेंट में अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं और निर्वस्त्र पड़े होते हैं।
यह दृश्य कोई मामूली घटना नहीं है। यह साबित करने के लिए है कि जल प्रलय पानी से दुनिया की बाहरी गंदगी को तो साफ कर सकता है, लेकिन इंसान के भीतर बैठी बुराई को नहीं धो सकता। नया आदम भी पुरानी कमजोरियों का शिकार हो गया।
यही वो बात है जो हमने शुरुआत में कही थी। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे किसी कंप्यूटर को फैक्ट्री रीसेट कर दिया जाए। बाहर से लगता है कि सब कुछ साफ हो गया है, स्क्रीन चमक रही है, नई शुरुआत हो गई है।
हाँ,
लेकिन बाद में पता चलता है कि असली वायरस तो हार्डवेयर के अंदर ही ऑपरेटिंग सिस्टम की जड़ों में छुपा हुआ था। वो बाहर के पानी से नहीं धुल सकता था।
बहुत ही सटीक उदाहरण है। वो वायरस मानव स्वभाव का ही अभिन्न हिस्सा बन चुका था जो पानी के पार भी जिंदा रहा।
लेकिन यहाँ मुझे नूह के लिए थोड़ी सहानुभूति महसूस होती है।
ऐसा क्यों?
क्या ये नूह के साथ थोड़ा ज्यादा ही सख्त रवैया नहीं है? मेरा मतलब है, इस आदमी ने पूरी मानवता को बचाया एक ऐसी दुनिया में जहाँ सब उसके खिलाफ थे। उसने दशकों तक एक विशाल जहाज बनाया।
सही है।
क्या उसे एक रात थोड़ी शराब पीने और अपने ही टेंट की निजता में आराम करने के लिए इतना जज किया जाना चाहिए?
ये सोचना स्वाभाविक है और कई लोग यही सवाल उठाते हैं, लेकिन स्रोत का काम ये स्पष्ट करता है कि बाइबल का ये हिस्सा नूह को जज करने या उन्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं लिखा गया है।
अच्छा, तो फिर इसका उद्देश्य क्या है?
ये प्राचीन साहित्य की एक बहुत बड़ी खासियत है कि ये अपने नायकों की कमजोरियों को छिपाता नहीं है। ये सिर्फ एक नग्न सच्चाई पेश कर रहा है कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी महान, धर्मी या ईश्वर के कितने भी करीब क्यों ना हो, मानव स्वभाव की इन अंतर्निहित कमजोरियों से अछूता नहीं है।
समझ रही हूँ।
ये नूह का पतन नहीं बल्कि मानव स्वभाव की वास्तविकता का चित्रण है।
और इस व्यक्तिगत वास्तविकता का जो परिणाम होता है वो और भी गहरा और सार्वजनिक है, क्योंकि उन नूह की इस कमजोरी या भेद्यता का फायदा उनके ही परिवार का एक सदस्य उठाता है। ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं था।
बिल्कुल।
यहीं से वो पारिवारिक विवाद शुरू होता है जिसका असर सदियों तक आने वाले राष्ट्रों पर पड़ने वाला था।
हाँ, और ये घटना दिखाती है कि कैसे एक व्यक्तिगत भूल एक बड़े पारिवारिक और सामाजिक संकट में बदल सकती है।
नूह के तीन बेटे हैं, शैम, हाम और यपेत। हाम, जो बाद में कनान का पिता बनता है, अपने पिता को उस कमजोर और निर्वस्त्र स्थिति में देखता है। लेकिन वो चुप रहने या पिता के सम्मान की रक्षा करने के बजाय बाहर जाकर अपने दोनों भाइयों के सामने इस बात का मजाक उड़ाता है, या कहें तो गॉसिप करता है।
और हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक मामूली गपशप या हंसी मजाक नहीं था।
हाँ,
उस प्राचीन संस्कृति में और विशेष रूप से इस कहानी के पहले पाठकों के लिए ये एक बहुत बड़ा अपराध था। ये 10 आज्ञाओं में से 5वीं आज्ञा यानी माता पिता का सम्मान करने का सीधा उल्लंघन था।
अच्छा।
ईश्वर ने परिवार को सही दिशा में ले जाने के लिए माता पिता को एक अधिकार या अथॉरिटी दी है। हाम का कृत्य केवल अपने पिता का मजाक उड़ाना नहीं था, बल्कि वो उस अधिकार पर सीधा हमला था। वो अपने भाइयों को भी उसी अनादर में शामिल करना चाहता था।
ओहो, इसके ठीक विपरीत शैम और यपेत का व्यवहार देखिए। वे अपने पिता के प्रति गहरा सम्मान दिखाते हैं।
बिल्कुल।
कहानी में उस दृश्य का बहुत ही स्पष्ट वर्णन है। वे कपड़ा या कंबल अपने कंधों पर रखते हैं और उल्टे पांव चलकर टेंट में जाते हैं, ताकि वे अपने पिता को इस कमजोर अवस्था में न देखें और उन्हें ढक देते हैं।
यह एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। ये केवल शारीरिक नग्नता को ढकना नहीं था, यह एक पिता की गरिमा को वापस लौटाना था। शेम और यपेत ने उस अथॉरिटी का सम्मान किया जो हाम ने तोड़ दी थी।
लेकिन जब नूह जागते हैं और उन्हें पता चलता है कि क्या हुआ है, तो उनका रिएक्शन बहुत ही भयानक होता है। वे हाम के बेके कनान को श्राप देते हैं कि वे अपने भाइयों के दासों का दास होगा। और शेम और यपेत के लिए वे सीधे उन्हें आशीर्वाद नहीं देते, बल्कि ईश्वर को आशीर्वाद देते हैं, ये मानते हुए कि ईश्वर ही उनके भविष्य की नियति तय करेंगे।
सही कहा।
अब यहाँ आकर मुझे एक बहुत बड़ा सवाल पूछना है। ये बात आज के आधुनिक विचारों को बहुत अजीब और अन्यायपूर्ण लग सकती है।
कैसा सवाल?
गलती हमने की थी। तो श्राप उसके बेटे कनान को क्यों मिला? ये तो ऐसा है जैसे पिता की गलती की सजा पोते को दी जा रही हो।
ये सवाल अक्सर उठता है।
कुछ आधुनिक व्याख्याकार तो यहाँ तक कहते हैं कि शायद टेंट के अंदर कोई भयानक यौन अपराध या सेक्सुअल इंडिस्क्रेशन हुआ होगा, तभी इतना कठोर श्राप दिया गया। क्या आज के इस शोध में इस बात का कोई आधार है?
ये एक बहुत ही आम धारणा है। कई लोग इस घटना को ज्यादा गंभीर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि श्राप सही लगे, लेकिन हमारे स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इसका कोई आधार नहीं है।
अच्छा, तो फिर असल बात क्या थी?
घटना सिर्फ इतनी ही थी कि हाम ने पिता की कमजोरी को देखा और उसका सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाकर उनके अधिकार को चुनौती दी। जहां तक कनान को श्राप मिलने की बात है, हमें प्राचीन समाजों की मानसिकता को समझना होगा।
तो उस समय की मानसिकता क्या थी?
यत जैसे पिता वैसा बेटा के सिद्धांत पर आधारित था। प्राचीन समाजों में यह माना जाता था कि एक व्यक्ति का चरित्र उसके पूरे वंश को प्रभावित करता है। आने वाली पीढ़ियां अक्सर अपने माता पिता के पापों और उनके नैतिक रवैये की नकल करती हैं और उसे और भी आगे ले जाती हैं। हाम का ये अनादर कनान की पीढ़ियों में और भी बुरे और विकृत रूप में सामने आने वाला था।
और ये बात उस समय की जनता के लिए एक बहुत बड़ा संदेश थी, है ना? शोध में ये बताया गया है कि ये कहानी मोसिस के समय के इसराइलियों के लिए एक नैतिक नक्शे की तरह काम कर रही थी।
बिल्कुल, इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये मूल रूप से उन्हीं इसराइलियों के लिए लिखी गई थी जो मिस्र से निकलकर कनान देश जा रहे थे।
हाँ,
जब वे कनान की सीमाओं पर खड़े थे तो ये कहानी उन्हें कनानियों की नैतिक गिरावट के बारे में पहले से चेतावनी दे रही थी। लेवी व्यवस्था या लेविटिकस के 18वें और 20वें अध्याय में साफ तौर पर जिक्र है कि कनानी लोग किस तरह के अनैतिक आचरण में डूबे हुए थे।
तो ये कहानी इसराइलियों को बता रही थी कि कनानियों का ये पतन कोई नई बात नहीं है, इसकी जड़ें उनके पूर्वज हाम के चरित्र में छिपी हैं।
एकदम सही।
यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। इसका मतलब है कि ये नस्ल या एथनिसिटी का मुद्दा बिल्कुल नहीं था।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये नहीं कह रहा था कि कनानी किसी खास कुल के हैं इसलिए बुरे हैं, बल्कि उनके काम बुरे थे, उनका नैतिक आचरण भ्रष्ट था।
एकदम सही। और इस अध्याय में इसका एक बड़ा सबूत भी दिया गया है। यिर्मयाह और हेजेकेल की किताबों का संदर्भ देते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि इंसान अपने व्यक्तिगत कर्मों के लिए खुद जवाबदेह होता है। कोई भी नियति पूर्व निर्धारित या पत्थर की लकीर नहीं होती। अगर ये सिर्फ नस्ल या जेनेटिक्स की बात होती तो इसराइली हमेशा सुरक्षित रहते और कनानी हमेशा श्रापित।
हाँ, ये तो सोचने वाली बात है।
लेकिन इतिहास गवाह है कि जब बाद में इसराइलियों ने कनानियों की बुराइयां जैसे बहुदेववाद और अनैतिकता अपना ली तो अंततः उन्हें भी उसी भूमि से निष्कासित होना पड़ा। ईश्वर का न्याय निष्पक्ष था।
ये सचमुच आंखें खोलने वाला है। ये दिखाता है कि कैसे ये प्राचीन कहानियां सिर्फ बीते हुए कल का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े उद्देश्य से बुनी गई हैं।
बिल्कुल।
और इसी बनावट या संरचना को समझना हमारे अगले हिस्से का मुख्य विषय है, जिसे हम वंशावली का सैंडविच कह सकते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये इस पूरी कहानी को देखने का नजरिया बदल देता है।
ये एक बहुत ही दिलचस्प संरचना है। ये इस बात को सामने लाता है कि जल प्रलय की ये पूरी कहानी बड़े ढांचे में किस तरह फिट बैठती है और इसका अंतिम अर्थ क्या है।
स्रोत बताता है कि नूह और जल प्रलय की ये पूरी कहानी, जो अध्याय 6 से शुरू होकर अध्याय 9 तक चलती है, दरअसल अध्याय 5 के वंशावली के बीच में एक सैंडविच की तरह रखी गई है। अध्याय 5 में नामों की एक बहुत लंबी लिस्ट है, जहां हर पीढ़ी के लिए एक ही वाक्य एक लय में दोहराया गया है, उसने इतने साल जीवन जिया और फिर वो मर गया।
हाँ।
और दिलचस्प बात यह है कि नूह की कहानी का अंत अध्याय 9 में ठीक उसी वाक्य के साथ होता है, नूह 950 वर्ष जिया और फिर वो मर गया।
यह संरचनात्मक बनावट कोई इत्तफाक नहीं है। ये साबित करती है कि कहानी वंशावली को समझाती है और वंशावली कहानी के महत्व को बढ़ाती है।
अच्छा।
हाँ, मौत की वो लय जो अध्याय 5 में एक ड्रमबीट की तरह चल रही थी, बाढ़ के पार आकर अध्याय 9 में फिर जुड़ जाती है। यह एक स्पष्ट रिमाइंडर है कि बाढ़ ने दुनिया को पानी से तो साफ कर दिया, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी समस्या यानी पाप और मृत्यु का अंतिम समाधान जल प्रलय नहीं था।
मौत का वो सिलसिला जो आदम से शुरू हुआ था, वो नूह के बाद भी जारी रहा।
बिल्कुल।
तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर जल प्रलय अंतिम समाधान नहीं था, तो नए नियम यानी न्यू टेस्टामेंट में इस पूरी घटना को कैसे देखा गया है?
नए नियम में नूह और जल प्रलय की छवि का बहुत गहरा और प्रतीकात्मक उपयोग किया गया है। उदाहरण के लिए 2 पत्रस में नूह को धार्मिकता का प्रचारक कहा गया है।
लेकिन एक सेकेंड रुकिए, मैंने उत्पत्ति की किताब पढ़ी है और जहां तक मुझे याद है, नूह श्राप देने से पहले पूरी कहानी में एक शब्द भी नहीं बोलते, वो बिल्कुल खामोश रहते हैं।
हाँ, ये सच है।
तो अगर उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, कोई उपदेश ही नहीं दिया, तो नया नियम उन्हें प्रचारक क्यों कह रहा है?
यही तो इस बात की सबसे बड़ी खूबसूरती है। बिना एक शब्द बोले एक सूखे इलाके में सालों तक एक विशाल जहाज का निर्माण करना अपने आप में उस दौर के लोगों के लिए सबसे बड़ा और मुखर प्रचार था।
अरे वाह।
जरा सोचिए, एक इंसान रोज उठता है और एक नाव बनाता है जहां दूर दूर तक पानी नहीं है। वो लकड़ी का हर एक तख्ता जो नू लगा रहे थे, वो आने वाले न्याय और आपदा की एक मूक लेकिन बहुत स्पष्ट चेतावनी थी।
उनका कर्म ही उनका उपदेश था।
ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है।
ये बिल्कुल एक रशियन नेस्टिंग डॉल की तरह है ना, जहाँ एक गुड़िया के अंदर दूसरी गुड़िया होती है।
बिल्कुल, पत्रस में बपतिस्मा से जुड़ा गया है।
अच्छा, बपतिस्मा से?
हाँ, बपतिस्मा सिर्फ पानी से नहाना नहीं है, जल प्रलय के गहरे पानी में डूबना पुरानी दुनिया और पुरानी व्यवस्था की मृत्यु का प्रतीक है, शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में। और उस जहाज से सुरक्षित बाहर आना, पानी के उस पार जाना, एक नए जीवन का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि कैसे अंतिम समय में, जब दुनिया में बुराई चरम पर होगी, ईश्वर बुरे लोगों के बीच से अपने लोगों को सुरक्षित बाहर निकालते हैं। पानी विनाश भी लाता है और नया जीवन भी।
तो अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटें, तो हम देखते हैं कि ये शोध हमें एक बहुत ही यथार्थवादी दुनिया दिखाता है। ये कोई परियों की कहानी नहीं है जहां सब कुछ परफेक्ट होता है।
बिल्कुल नहीं, यह विश्लेषण बहुत ही निष्पक्ष रूप से ये दर्शाता है कि उत्पत्ति की किताब इंसानी खामियों या कमजोरियों को छिपाने की कोशिश नहीं करती।
हाँ,
चाहे वो जल प्रलय से पहले की मानवता की सामूहिक बुराई हो, या नूह जैसे महान व्यक्ति की व्यक्तिगत कमजोरी, या फिर हाम का अनादर। ये उन नैतिक रास्तों का नक्शा पेश करती है जो सदियों बाद राष्ट्रों के उत्थान और पतन का कारण बने, जैसे इसराइल और कनानियों का संघर्ष। इस विषय का और भी विस्तार अगले सेशंस में राष्ट्रों की तालिका और बेबल की मीनार में देखने को मिलेगा, जहां मानव स्वभाव की यही कमजोरियां एक वैश्विक रूप ले लेती हैं।
ये वाकई एक बहुत ही शानदार और सोचने पर मजबूर करने वाला सफर रहा। हमने एक क्लीन स्लेट की उम्मीद से शुरुआत की थी और देखा कि इंसान की फितरत कितनी गहरी है। इस गहरे अध्ययन को खत्म करने से पहले मैं एक बात सोचे बिना नहीं रह पा रही हूँ।
बताइए, क्या बात है?
आज के हमारे इस अध्ययन ने हमें बताया कि कैसे बाढ़ का पानी, पुराने को खत्म करने और जहाज से बाहर आना एक नए जीवन का प्रतीक था, एक तरह का विशाल ग्लोबल रीसेट। लेकिन ये हमें अपने आज के समय के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आज के समय में भी जब कोई बड़ा वैश्विक संकट, जैसे कोई भयंकर महामारी, कोई विश्व युद्ध या कोई और बड़ी त्रासदी एक प्रतीकात्मक बाढ़ की तरह आता है और हमारी पुरानी व्यवस्थाओं को, हमारे जीने के पुराने तरीकों को धो डालता है।
हाँ, बिल्कुल।
तो क्या मानवता वाकई में कुछ नया सीख कर बाहर आती है, या क्या इंसान भी नोह की तरह अपनी उस नई और साफ दुनिया में वही पुराने बीज बोता है जो वापस उन्हीं पुरानी गलतियों, उसी अहंकार और उन्हीं खामियों को जन्म देते हैं? क्या हम कभी अपनी हार्ड ड्राइव का असली वायरस डिलीट कर पाते हैं? ये सच में सोचने वाली बात है।
बिल्कुल सही कहा। ये निश्चित रूप से एक ऐसा सवाल है जो उस हजारों साल पुराने इतिहास को हमारे आज के सच से सीधा जोड़ देता है। ये हमें सिर्फ समाज के भीतर नहीं बल्कि खुद अपने भीतर झांकने का मौका देता है, क्योंकि बदलाव की शुरुआत उस बाढ़ से नहीं बल्कि इंसान के भीतर से होनी चाहिए।
बिल्कुल सही कहा। ज्ञान की इस अद्भुत खोज में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये उम्मीद है कि ये चर्चा विचारों को एक नई दिशा देगी और चीजों को एक अलग नजरिए से देखने में मदद करेगी। ऐसे ही नए परिप्रेक्ष्य, गहरे विश्लेषण और ज्ञानवर्धक विचारों के साथ मिलते हैं अगले गहन अध्ययन में।